ਰੱਗਬੀ ਕੱਪ 2022 ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਫਰਸਟ ਆਂਟੇਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, USA, ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਮਨ ਚਾਹਲ 416-648-5050 ਜਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਾਨ 416-617-2405। 29th ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2022।
Save big, big bucks. Polystream Auto Glass, windshield repair and replacement. Small chip ho ya scratch, professional staff karenge aapki windshield repair minton mein, wo bhi insurance claim ke saath. Special chip repair promotion of $60 only. Serving in Mississauga, Milton, Oakville, Burlington or Hamilton mein. For service call today 905-818-8472.
जी समय नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 6:47 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कैन बी मोर परफेक्ट देन दिस। तो साहब चलिए अब हम चलते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और सारे तानों की खबरें आपकी तरफ लेने के लिए। शाजिया मलिक जी मेरे साथ हैं। जी शाजिया
जी, जी हाँ जी। अच्छा महेश भाई, चूंकि पोप साहब अब आए हुए हैं कनाडा के अंदर, तो हम हमेशा उनकी खबरों से जो है वो शुरू करते हैं। तो आज भी जो है वो जा रहे थे एडमंटन के फुटबॉल स्टेडियम के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है वहां पे जब एंटर हो रहे थे तो बहुत सारी जनता वहां पे आई हुई थी। और आप देखिए, एक छोटी सी गाड़ी में वो बैठे हुए थे और वो कोई डर नहीं रहे थे और बच्चों को उठा रहे थे और उनको प्यार कर रहे थे और उनको ब्लेस कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने एड्रेस किया वहां पे और उनको बताया सरों को कि भाई हम बड़ा जो है सॉरी। ये देखें महेश भाई, जो हमारा टीवी देख रहे हैं ना वो उनको ये नजर आएंगी, ये पिक्चर्स जो हैं ये देखें जरा। कोई उसमें, हालांकि वो जो हैं लोग हैं आसपास उनके इंटेलिजेंस के, लेकिन फिर भी जो है ये बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ जो है उनके बच्चों को उठा रहे थे, उनको ब्लेस कर रहे थे और ये जो है फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जा रहे थे। लाखों ही के तादाद में लोग यहां पे आए हुए थे और इन्होंने फिर वहां पे जाके स्पीच की और फिर से एक दफा अपना रोल जो है उसका कैथोलिक चर्च का और वो सारी बातें दोहराई कि जो बड़ा इन्होंने पेन दिया है उसको इंडिजिनस लोगों को। और फिर उसके बाद जो है सेंट एन जो है अब इस वक्त गए हुए हैं क्योंकि वहां पे एक फेस्टिवल चल रहा है, क्योंकि ये जो सेंट एन है ये ग्रैंड मदर थी जीसस की, तो उसके ऊपर। और फिर उसके बाद ये इन्होंने अब ट्रैवल करना शुरू किया है। हमने सुना है कि अब ये जा रहे हैं ये स्टैंड स्टे एन की तरफ, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ एडमिंटन है। अब तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ अब ये जा रहे हैं और वो कहते हैं कि जी ये मेरा जो एनुअल पिलग्रिमेज है इसके अंदर मैं जो इंडिजिनस लोगों की पेन अगर कम हो सकती है तो वो मेरे लिए जो है बड़ी खुशी की बात होगी। तो लोग उनके इन जेस्चर्स को, इन बातों को जो है बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो वहां पे लोग, कल की भी खबरें थी कि लोग ओ कनाडा बोलते हुए पढ़ते हुए रो पड़े।
पोप फ्रांसिस ने
उसका साथ दिया तो रो पड़ी वो। तो मतलब है, वो देख रहे हैं कि पोप जो है वो वाकई जेन्युइनली जो है जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बड़ी बात है ये। अच्छा जनाब, बिग ब्रेकिंग न्यूज जो कि हमारा आज वेबसाइट देख रहे थे उन्होंने देखी होगी कि जो एंड्रिया हॉर्वेथ हैं उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है कि वो हैमिल्टन से लड़ेंगी म्यूरल रेस जो कि अभी अक्टूबर में होने वाली है। इससे पहले आपको पता ही है कि जिस वक्त ये बैक टू बैक इन्होंने दो इलेक्शन लड़े थे ऑन्टेरियो की प्रीमियरशिप के लिए ये देख रही थी, लेकिन एनडीपी जो है वो इतने वोट्स नहीं ले सकी कि इनको प्रोविंशियल लेवल पे कोई मिलता बड़ा ओहदा। तो अब ये कह रही हैं चूंकि मैं हैमिल्टन में रही हूं और यहां पे ये है एमपीपी भी हैं हैमिल्टन सेंटर से, तो वो कहती हैं लोग मुझे जानते हैं मैं उनको जानती हूं।
और
तो
इनकी अच्छी कारकर्दगी ये है कि ये जो है दोनों इलेक्शंस में
जी
ये सेकंड नंबर पे आई और लिबरल्स थर्ड पे।
जी बिल्कुल। तो वो कहती हैं जी मैंने अपना सफर शुरू किया था एज हैमिल्टन सिटी काउंसलर 1997 में और फिर प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में 2004 में शामिल हुई थी और एनडीपी की ये ऑन्टेरियो की लीडर थी फॉर 13 इयर्स। तो फोर इलेक्शंस में इन्होंने किए थे पार्टिसिपेट और फिर उसके बाद जून जो ये था उसके अंदर इन्होंने अनाउंस किया था कि मैं स्टेप डाउन कर रही हूं एज पार्टी लीडर जो है, तो ऑन्टेरियो यानी कि ऑन्टेरियो के जो पार्टी लीडर। तो अब ये इनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये अब वापस आए ना आए, बहुत सारी जो थी वो थी कंजक्चर्स थे, लेकिन आज इन्होंने कह दिया है कि जी नहीं अब मैं म्यूरल रेस में पार्टिसिपेट करूंगी। तो देखेंगे कि अब ये जीतती हैं कि नहीं। अच्छा जनाब, आपको पता ही होगा कि ब्रैम्पटन ईस्ट के एक लिबरल थे, एमपी थे राज गिरेवाल, और उनके ऊपर जो थे बड़े वो एलिगेशंस आ गए थे. एक तो फाइनेंशियल जो मिस अप्रोप्रिएशन थी उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस भी लगाए गए थे, और इन्होंने अपने गैम्बलिंग के जो इनको एडिक्शन हो गई थी उसके डेट्स बढ़ गए थे, उसके होते हुए फिर इन्होंने अपनी जो सीट है वो ब्रैम्पटन ईस्ट से छोड़ दी थी. तो आज जो है इनके बारे में अब कहा जा रहा है कि एज अर्ली एज दिस फॉल ये जो इनका ट्रायल है ये फिर से जो इन्होंने एथिक्स कमिश्नर से जो बातें छुपाई थी उसके ऊपर खुल सकता है, तो वो चलेगा इसके ऊपर. एलिगेशंस इनके ऊपर ये भी थे कि चूंकि इनको गैम्बलिंग की आदत थी तो एक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिजनेसमैन थे यूसुफ यनिल्मज, उनसे इन्होंने शायद $200,000 का लोन लिया था, इसलिए कि इन लीव ऑफ अलेजली दीज आर ऑल एलिगेशंस नॉट प्रूवन स्टिल इन कोर्ट, के इन लीव ऑफ के जो आपका मीट एंड ग्रीट ट्रूडो साहब का इंडिया में होगा उस डेलीगेशन में आप होंगे और वहां पे आप बड़ा क्लोज हो सकते हैं. अच्छा, ये जो एलिगेशंस हैं ये वैसे इन्होंने खुद भी डिनाई किए थे, और ये जो यूसुफ साहब हैं इन्होंने भी किए थे. उन्होंने कहा कि मैं खुद इतना बड़ा जो है बिजनेसमैन हूं कि मुझे किसी को पैसे दे के ट्रूडो साहब से मिलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जो है लिबरल ऑफिशियल्स के साथ मिल सकता हूं. तो बहरहाल जी, अब ये खुलेगी ट्रायल तो अब पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि जो क्राउन है उन्होंने तो यही एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि इन्होंने स्पेशल वीजाज दिए थे ये जो इंडिया का ट्रिप था उसके लिए, और उन लोगों से फिर पैसे अलेजली लिए थे. तो देखेंगे कि आप ये फॉल में जिस वक्त शुरू होंगी ये प्रोसीडिंग्स तो पता चलेगा कि ये चार्जेस कितने ठीक हैं या नहीं है. आज एक और जो बड़ी खबर है, आपको पता ही है कि कनाडा के कंजर्वेटिव जो प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन हार्पर, उन्होंने आज एंडोर्स किया है पीए पोरेवर को, और उन्होंने कहा है कि ये वो वाहिद लड़का है जो कि लिबरल्स का जवाब दे सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी ये हमेशा से जो लिबरल जो ट्रूडो साहब की जो गवर्नमेंट है उसमें हमेशा यही जो है लाउडेस्ट वॉइस होती है जो कि इन्फ्लेशन पे डेट्स पे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनके ऊपर ये बात करता है. और ये लोगों को लेकर बड़ी हैरत हुई कि अब तो सिर्फ लेस देन टू मंथ्स रह गए हैं ये जो इनका जो अब होने वाला है लीडर का इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने मेल इन बैलेट्स तो डालने शुरू कर दिए हैं. तो अब ये इनकी एंडोर्समेंट इतनी लेट क्यों आई है? तो भरल जी अब ये आई है,
बट स्टिल 180,000 ऑल टुगेदर हैं जो वोटर्स हैं,
जी बिल्कुल
180,000 मेंबर्स जो हैं जो इनके पास वोटिंग राइट्स हैं, तो वो जो है उनको भी उनमें से भी कई लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई
पीएम पोरेवर को दें.
मगर ये अब आया कि क्योंकि ये तो नाब हार्पर साहब खुद ही जो है बड़ी बुरी हार
दोनों दफा 2015 में भी और उसके बाद भी जो
हार के फिर ये निकले हैं यहाँ से. हाँ, तो इनकी क्या पॉपुलैरिटी है, कितने लोग इनके साथ इनकी बात मानेंगे जो है ये आगे जाएंगे. समटाइम्स शाज़े जी फायर बैक, यस इट कुड फायर बैक. तो यू नो बेहतर है कि पॉलिव को कि वो ये कहें कि भाई जितने पुराने लीडर्स हैं अब अपनी जगह में बैठे रहे, यू नो व्हाट, इंटरनली मेरी हेल्प कर सकते हैं मगर ओपनली मेरी
ओपनली ना करें. हाँ जी, क्योंकि देखें ना जैसे अब जो ब्रैम्पटन के मेयर हैं वो पैट्रिक ब्राउन, वो तो अभी तक मान नहीं रहे हैं अपने ऊपर जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये मुझे नहीं कंटेस्ट करने देते हैं ये लोग तो आप जॉन शेरे के पीछे खड़े हुए हैं, अपने जितने सपोर्टर्स हैं उनको कह रहे हैं
उनको.
तो अब आप वाली ही बात है, आप वाली बात है कि अगर भाई तुम्हारी जो है पॉपुलैरिटी नहीं है और तुम तो इसी तरह अगर ब्राउन साहब की भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है और आपके ऊपर एलिगेशंस भी अलेजली हैं तो फिर आप कितना फायदा दे रहे हैं जॉन शेरे को, और इसी तरह स्टीफन हार्पर साहब कितना फायदा दे रहे हैं पीएर पोरेवर को. तो ये इन लोगों को वाकई इनसे जरा थोड़ा दूर ही रहना चाहिए. तो बस जनाब ये भरल जो है अब पोलिटिकल फ्रंट पे हमारे इधर चल रहा है, तो देखेंगे कौन इनका लीडर बनता है. वो कहते हैं कि नहीं ये एक लड़का है जिस बड़ा जो है वो
सो फार अभी तक जो है वो ये लीड कर रहे हैं, जो पोल्स जितने भी आए हैं उसमें ये लीड कर रहे हैं, मगर ये कहना कि भाई ये डेफिनेटली बन जाएंगे वो तो आखिरी वक्त में पता लगेगा. एंड इन चीजों में जो है एक दिन भी बहुत बड़ा दिन होता है,
बहुत बड़ा दिन होता है, एक दिन में पलट जाती हैं चीजें.
एक मुंह से आपके कोई गलत बात निकल आई तो फिर वो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट इनकी जो डिबेट है तो उसके अंदर पीएम पोरेवर ने कहा है कि मैं अटेंड नहीं करूंगा. जो पांच लोग जो रह गए हैं उनकी जो डिबेट होने वाली है तो उसमें से पैट्रिक ब्राउन तो आ नहीं रहे उसमें, मगर पियर पार्लर ने भी कहा है कि भाई मैं भी नहीं आऊंगा, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर
क्या डिबेट होगी, क्योंकि इनको इनको शायद मुझे लगता है कि किसी ने कहा है कि जो आखिरी वक्त में अगर कोई आपके मुंह से गलत बात निकल गई ना तो वो लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि ऐसे ही हुआ था टॉम मल्केयर के वक्त में, आपको पता है कि टॉम मल्केयर कितना लीड कर रहे थे, इतना आगे आगे जा रहे थे, लेकिन जो लास्ट डिबेट हुई जिसमें कि उन्होंने ट्रूडो साहब को रुला दिया उनके फादर का ताना दे के ना, उस पर सारी की सारी बाजी फिर पलट गई।
हालांकि वो he was a very good gentleman,
very good person, मैंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, टॉम मल्केयर का मैंने इंटरव्यू लिया, आपको पता है कि इतना एक दफा रश में यहाँ पे आए और उनकी मीडिया टीम ने कहा कि आज वो किसी को इंटरव्यूज नहीं दे रहे, फिर भी मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं आप मेरे से चार बातें प्लीज कर लें, तो ऐसे करके ना डक करके कहते हैं ओके प्लीज गो अहेड, वेरी नाइस पर्सन,
वेरी नाइस पर्सन,
वेरी नाइस, वेरी नाइस पर्सन। तो मुझे मुझे भी बड़ा उनका अफसोस हुआ था, लेकिन बहरहाल जी ट्रूडो साहब तो रॉक स्टार है ना, आपको पता ही है।
थैंक यू।
अच्छा जी, अच्छा जनाब, आज जो लाइन टू थी सबवे सर्विस के ऊपर जो कि थी ब्लूर एंड जो है ये योंग स्टेशन के ऊपर, उसको सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसके बारे में इतला आई थी कि यहां पे जो है वो कुछ फायर वायर लग गई है। पहले तो शुरू में कहा गया कि ये माइनर सी फायर है, लेकिन उसके बाद फिर ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे इनके ट्रोनो फायर के, उन्होंने और टीटीसी के जो सुपरवाइजर थे वहां पे उनको बुलाया गया और उनको बताया गया सम जो थी ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई जो चीजें थी, तो उन्होंने कहा कि जो स्मोल्डरिंग है इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो इसलिए सर्विस को सस्पेंड करना पड़ेगा, और ये बिटवीन सेंट जॉर्ज और पेप स्टेशंस जो हैं उनको किया गया, और लेकिन बसें जो थी उसके बीच में चल रही थी,
मगर बसें चल रही थी, दैट वाज अ बिग chaos,
chaos, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल,
लोगों को तीन तीन घंटे लगे हैं
एक काम पे पहुंचने के लिए,
दूसरे बस पे, दूसरे बस से तीसरी बस पे पहुंचते पहुंचते वहां पर बहुत टाइम लग गया उनको,
और रेस्टोरेशन का काम अभी भी चल रहा है उसके ऊपर,
और वो जो है वो बसेस बहुत ही स्लो
चल रही थी,
चल रही थी, उनको चाहिए था कि जितनी ज्यादा बसेस होती वो चला देते वहां पर, मगर और पैंडेमिक पे इन्होंने कहा था कि डिस्टेंस अभी भी रखे आप, मगर इन बसेस में आज कोई डिस्टेंस नहीं था,
नहीं 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 नहीं,
बॉडी टू बॉडी टचिंग के साथ
बिल्कुल बिल्कुल लोग जा रहे थे, यस यस बिल्कुल, तो बड़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई, और उन्होंने कहा जी हम जल्दी से जल्दी रेस्टोरेशन का काम करेंगे, लेकिन अभी तक भी आखिरी न्यूज आने तक भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा था अभी। अच्छा जनाब, जो पैट्रिक ब्राउन साहब हैं और उनके काउंसलर्स जो हैं वो कल शाम को एक पार्क पे देखे गए जिसको कि रीनेम किया गया है पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन के ऊपर, उनको पाकिस्तानी ये पॉलिटिशियन थे शहबाज भट्टी साहब जिनको के जो है जिनकी के किलिंग हो गई थी पाकिस्तान में, और उनकी ऑनर में जो है ये पार्क बनाया गया है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ये मिनिस्टर थे, और पैट्रिक ब्राउन साहब ने कहा कि ये शो करता है इंटरफेथ हार्मनी एक्सेप्टेंस इंक्लूसिविटी इन आवर कम्युनिटी, और उन्होंने कहा कि हम उनकी लेगेसी करेज और सेक्रीफाइस जो है उसको सलाम पेश करते हैं। तो ब्रैम्पटन की काउंसिल के मेंबर्स, हालांकि उनके बीच में कुछ जो है आपको पता ही है कुछ इख्तलाफ भी हैं, मगर वो भी सारे यहां पे देखे गए, और ये जो इनिशिएटिव था ये अमरजोत संधु जो कि एमपीपी हैं ब्रैम्पटन से, वो कंजर्वेटिव एमपीपी, तो उनका ये लाया हुआ वो था, तो उसके ऊपर फिर पैट्रिक ब्राउन उनकी काउंसिल जो थी वहां पे मौजूद थी, तो ये शहबाज भट्टी पार्क जो है ये इधर लाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब आज एक रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक जो ईयू है वो आज बैठे हुए थे, बहुत सारे कंट्रीज जो थे ईयू के उनके बीच में झगड़ा चल रहा था कि क्या गैस की राशनिंग की जाए कि ना की जाए, क्योंकि कुछ कंट्रीज जैसे कि हंगरी जर्मनी थे वो कह रहे थे हम नहीं कर सकते हम बिल्कुल ही मर जाएंगे जो है, लेकिन अब उनके बीच में कंसेंसस आ गया है, और उन्होंने कहा जी कि फ्रॉम टुमारो, क्योंकि ये गैस प्रॉम जो है गैस बहुत सारी जगहों पे कंप्लीटली बंद कर देगी, स्पेशली जो नॉर्थ स्ट्रीम वन है, एक नॉर्थ स्ट्रीम वन और एक टू है ना जैसे आपने कल बताया था माजी भाई, तो नॉर्थ स्ट्रीम वन जो है उसके ऊपर कंप्लीटली ये कट कर देगी कल से वेंसडे से, तो इनको कहा गया है जी कि आप अब कर्व करने शुरू कर दें, थोड़े से कंट्रोल करें, और इनकी जो वॉलंटरली 15% हम अगस्त से लेके मार्च अगले साल तक हम कम करेंगे, इनके बीच में सहमति आ गई
है, हैव टू डू
इवन मोर करना पड़ेगा इनको, लेकिन अभी तो सहमति 15% पे आई क्योंकि जर्मनी और बहुत से हंगरी और ये सारे कंट्रीज मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा 15% करें, और जो बहुत ज्यादा नहीं करना चाहेगा फिर हम, वैसे तो ये मैंडेटरी है यूरोपियन यूनियन के जो डिसीजन होते हैं मैंडेटरी होते हैं सारों पे, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा कुछ अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़ा कम कर लें, लेकिन जो जर्मन इकोनॉमी मिनिस्टर हैं रॉबर्ट हेबर्ग, उन्होंने आज बड़ा सख्त बयान से दी है, हालांकि सबसे ज्यादा तो आप ही अफेक्टेड हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? वो कहते हैं जी हम पुटिन साहब को बताना चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन के जो बंदे हैं हम बड़े जो हैं वो यूनाइटेड हैं और आप हमें डरा नहीं सकते। पैन डरा क्या नहीं सकते, उन्होंने गैस बंद कर दी तो आप तो ठंड से मर जाएंगे सारे हैं जी। तो फिर मतलब है ऐसी बड़ी बड़ी बहती नहीं करो, बहरल जी मर्जी है आपकी, करना तो करो, हम क्या कर सकते हैं। तो ये जनाब इनके बीच में आज हुई है। एसोसिएटेड प्रेस की जनाब आज एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक बोरिस जॉनसन साहब जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल्स और एलिगेशंस जो आए थे, खासतौर पर पेंडेमिक में जो पार्टीज होती रही हैं उनमें से एक और भी स्कैंडल था जो कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उनको कहा गया था एक दफा कि अब आप जब ब्रिटेन के को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आप केजीबी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ जो थे वो मिले थे। अच्छा जी, ये वाकया हुआ था अप्रैल 2018 में और इसके अंदर जो रशियन कुछ बिजनेसमैन थे, एक थे जो रशियन बॉर्न न्यूज़पेपर ओनर हैं एफजी लेबेव और लेबदेव और उनके जो फादर हैं अलेक्जेंडर लेबदेव, तो उनके साथ ये मिले थे। तो आज उन्होंने इनको जो है वो अपनी इस मुलाकात को डिफेंड किया है। ये जो थे उस वक्त जो थी इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस एक के अंदर गए हुए थे ये, तो और नेटो की मीटिंग से ये वापस आए थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे यूके के। तो इनकी मुलाकात वहां पे इनके साथ हुई थी और उसके फौरन ही बाद ये हुआ था कि ये जो रशियन स्पाई था सर्जे स्क्रीपॉल और उसकी बेटी यूलिया, आपको पता ही है कि इंग्लैंड के सैल्सबरी के एरिया के अंदर वो जो है उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और बाद में पता चला था कि इनको नर्व गैस दी गई है और फिर उनकी डेथ हो गई थी और भी दो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सिक हो गए थे, में से एक जो डॉन स्ट्रूगस था वो उसकी डेथ हो गई थी। तो यूके ने ब्लेम किया था रशियन की ये जो जीआरयू सिक्योरिटी है विच इज अंडर केजीबी कि वो जो है उन्होंने ये सारे अटैक्स किए थे यहां पे और उन्होंने इन लोगों को मारने की कोशिश की थी, तो हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी था यूके का वो क्या कर रहा था इन लोगों के साथ। तो उसको इन्होंने कहा जी कि मैंने जो है कोई भी इनके साथ अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं की थी और मुझे याद भी नहीं पड़ता है कि मैंने कोई बात की थी। आपको पता ही है कि ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, 7 जुलाई को इन्होंने अभी रिजाइन किया है। तो लोगों ने आज जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यही कहा है कि भाईजान आपने तो वो जो पार्टी गेट स्कैंडल आया था उस वक्त भी कहा था कि मुझे तो नहीं पता कि मेरी गवर्नमेंट के कोई बंदे जो हैं वो पार्टी कर रहे थे पेंडेमिक में, और ना सिर्फ ये कि फिर वो बाद में पता चला कि आपकी गवर्नमेंट के बंदे कर रहे थे मगर बहुत सारी चीजों में आप खुद भी शामिल थे।
सही,
तो इसलिए अगर आप ये रहे हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने नेशनल इंटरेस्ट की उस वक्त कोई बात की थी तो हम ये चीज मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये एक और कट्टा खोलेंगे इनके ऊपर,
एक और कट्टा खुलेगा।
हाँ जी हाँ जी बिल्कुल खुलेगा ऐसे। तो ये आज बड़ी एसोसिएटेड प्रेस की खतरे में नाक न्यूज है इनके लिए। अच्छा जब रशिया जो है उसने आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है जी, एक और, एक तो वो गैस बंद कर रहे हैं पूरी तरह की यूरोपियंस की और ये कह रहे हैं कि हम जी उस पर मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने पैप्स पे। अब उन्होंने कहा है कि रीचिंग 2024 कंप्लीटली ये जो स्पेस स्टेशन है उससे हम बाहर आ रहे हैं और हमारी कोई अलायंस नासा के साथ या जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं उनके साथ नहीं चलेगी। वी आर कमिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हम अपना खुद का जो है बिल्ड करेंगे और ऑर्बिट में डालेंगे। और इसके ऊपर जो है अब नासा और जो बाकी के लोग हैं वो बड़े उनको हाथ पैर पड़े हुए हैं। इनकी जो डील है वैसे 2030 तक है, लेकिन ये जो यूरी बोरिसोफ जिनको के अभी लास्ट मंथ ही अपॉइंट किया गया है, बल्कि इस महीने के शुरू में अपॉइंट किया गया है टू लीड रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मो, उसका हेड इनको बनाया है और इन्होंने कहा है कि हमको अपने इंडिजिनस चीजें करने की जरूरत है, हमको नासा शासा के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। नासा और बाकी के यूरोपियन जो साइंटिस्ट हैं जो कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम करते हैं वो कहते हैं कि रशियन कॉस्मोनॉट्स जो हैं उनका एक्सट्रीमली हाई टेक्निकल जो नो हाउ है वो है, तो अगर ये चले जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होएगा। लेकिन रशिया ने कहा जी कि तुम लोग हमारे साथ जो कुछ कर रहे हो हम तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई अलायंस नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वी आर कमिंग आउट, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट जो 2030 तक है वो हम पूरी करेंगे एंड आफ्टर दैट नथिंग एट ऑल, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम 2024 से हम निकलना शुरू हो जाएंगे,
अपना खुद बनाना शुरू,
हाँ अपना खुद का बनाना शुरू कर देंगे और जो है हम निकलना शुरू कर देंगे। ब्लूमबर्ग की जनाब ये रिपोर्ट है क्योंकि वो हम कुछ करने की कोशिश करते हैं वो जो है मनी मार्केट्स की भी स्टोरियां, तो इसलिए हम ब्लूमबर्ग को भी जी अब हमने शामिल कर लिया है अपने रीडिंग उसके अंदर, ठीक है जी। ब्लूमबर्ग की आज की ये रिपोर्ट है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग रिपोर्ट, और जो कोई भी क्रिप्टो करेंसीज में कर रहे हैं इन्वेस्ट ना करो, जिस चीज को बैंक की बैकिंग नहीं है ना, किसी भी बैंक की बैकिंग या किसी गवर्नमेंट की अश्योरेंस नहीं है, उसमें कभी अपना पैसा ना डालें ना जाया करें। बहरहाल जी, एनीवेज आपकी मर्जी। कॉइनबेस ग्लोबल इंक जो है वन ऑफ द बिगेस्ट, ये जो चलाती है ये सारे जो आपने डिजिटल हाँ जी डिजिटल और क्रिप्टो ये जो एसेट्स चलाती है, इसके ऊपर जी जो है यूएस प्रोब अब खुल गई है कि अमेरिकन्स जो हैं वो कितना ट्रेड जो है ये डिजिटल एसेट्स में आपके साथ कर रहे हैं। और इसकी न्यूज आते ही कि जैसे ही यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन स्क्रूटनी जो है वो बिठा दी गई है इसके ऊपर कॉइनबेस के, उसके साथ ही 9.2% इनके शेयर्स जो हैं वो गिर गए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो आप टोकन्स देते हैं लोगों को, ये अब अंडर एसईसी इन्वेस्टिगेशन आएंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि आप लोग इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इसमें जो फॉर्मर इनके कॉइनबेस के मैनेजर हैं उनको भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा। और इनकी जो अब शेयर्स हैं दिन ब दिन गिरती जा रही हैं, न्यूयॉर्क के अंदर ऑलरेडी ये जो है बहुत नीचे इसके आगे हैं स्टॉक्स जो हैं, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ इट्स वैल्यू
एज ऑफ नाउ दिस मोमेंट, $21,039.35 पे ये ट्रेड कर रहा है, विच इज वे डाउन। आज वो $815 मीन्स के 3.72% डाउन गया है
जी जी जी। और ये सुबह के वक्त देखकर ज्यादा इसकी बुरी हालत थी, 5.23% पे ही आ गया था, से डाउन था, तो अब ये मुझे लगता है कि ये फिर से थोड़ा ऊपर आता जा रहा है। अच्छा जनाब, आज आईएमएफ की अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो आईएमएफ की वेबसाइट के ऊपर आज एक न्यूज है जो उनके न्यूज लेटर में है। आईएमएफ के मुताबिक बांग्लादेश जो है उसने भी अपने नेबर्स की तरह पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह अब जो है एक बेल आउट पैकेज मांगा है आईएमएफ से एट द ट्यून ऑफ $4.5 billion। बांग्लादेश ने कहा है कि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, हमारे ऊपर जो है हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, और हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए हमको फंड्स चाहिए हैं और हमारे बजट के भी नीड्स हैं। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर AHM मुस्तफा कमाल जो हैं उनको आज कोट किया है एक उनके डेली न्यूज़पेपर ने कि उन्होंने एक लेटर लिखा है आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जीवा के पास, और उन्होंने कहा है जी कि जो बांग्लादेश बैंक है उसने अभी अनाउंस किया था कि हमारे जो रिजर्व्स हैं डॉलर के रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा नीचे आ गए हैं, जो कि आगे हैं ये हमारे 39.67 बिलियन पे गिर गए हैं, और ये जो है बस इतने ही सफिशिएंट है कि इनमें इंपोर्ट्स किए जा सके फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, दैट्स इट। तो हाँ, तो हमारी हालत बहुत पतली है, और लास्ट ईयर जो हमारे रिजर्व थे वो 45.5 बिलियन थे, तो ये अब नीचे आ गए हैं इतने ज्यादा। तो वो कह रहे हैं जी कि उस दिन से ये जो रुपी है उसकी भी की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, 39% इनकी जो है इंपोर्ट्स जंप कर गई हैं, और रिमिटेंसेस जो हैं बाहर से जो बांग्लादेशी भेजते हैं 5% ड्रॉप कर गई हैं, और इसकी वजह यह है कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं पेंडेमिक के बीच में उनकी जॉब्स चली गई थी, और जो टाका है वो 20% गिर गया है अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो इसलिए जो है इनकी काफी हालत जो है वो खराब है। तो अब ये भी आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं। लुफ्थेंजा जी, लुफ्थेंजा जिसको कुछ लोग लुफ्थुन्निसा भी कहते हैं लुफ्थुन्निसा की बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि आज उन्होंने 1000 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारा ग्राउंड स्टाफ जो है वो अब कल से वॉकआउट जो है वो कर रहा है, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, और इससे पहले भी इस एयरलाइन ने हजारों ही अपनी जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल की थी, जिसकी के वजह से लॉन्ग क्यूज इनके ना सिर्फ बाकी दुनिया के मेजर एयरपोर्ट्स पे बल्कि इनके भी देखे जा रहे हैं। लुफ्थेंजा ने फ्रैंकफर्ट में जाने वाली 678 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं, और 345 फ्लाइट्स जो म्यूनिक को जा रही थी, और इसने अफेक्ट किया है 130,000 पैसेंजर्स को, जो कि बेचारे ख्वार हो रहे हैं इनके जो हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। और वो कहते हैं जी कि जब तक वो जो स्ट्राइक जो करने वाले वर्कर्स हैं वो कहते हैं जब तक हमारी जो इनकी यूनियन है वर्डी वो कह रही है कि 9.5% पे इंक्रीज जब तक आप नहीं देंगे टू वार्ड ऑफ दिस इन्फ्लेशन, उस वक्त तक हम वापस नहीं आएंगे। पिछले महीने भी, जून के महीने में भी इन्होंने 2000 फ्लाइट्स कैंसिल की थी। اپنی
ڈیل کر لی یہاں پر ٹورانٹو میں, تو اس کی وجہ سے جو ہے ساری فلائٹ یس بچ گئی ہیں, کیونکہ لاسٹ سیکنڈ ٹل دا لاسٹ سیکنڈ دے ور نیگوشیٹنگ, اور وہ جا کے آج ہی کی بات ہے کہ انہوں نے ڈیل پہ سائن کر دیا.
یہ تو جرمنی کی ایئر لائن ہے نا,
جرمنی کی ایئر لائن ہو یا انگلینڈ کی ایئر لائن ہو
یا چیچو کی ملیا کی ہو,
ہر جگہ ہر کہاں کی ہو,
چیچو کی ملیا,
چیچو کی ملیا. مگر ساری ایئر لائنس کا یہی ہے کہ ایئرپورٹ پہ جو فرینکفرٹ والوں کو کہیں کہ بھائی آ کے ٹورانٹو سے کچھ لیسن لے لیں,
ہاں اس طرح کے برے حالات کر لو آپ بھی, کیونکہ ہم تو انٹرنیشنل امبیرسمنٹ بن ہی چکے ہیں, تو آپ بھی بنو, ویلکم
ویلکم, نہ بنو ہم سے لیسن لو.
ہاں نہیں نہیں بنجو, کوئی بات نہیں ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو آلریڈی بن چکے ہیں. آپ بھی بن جاؤ گے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو نمبر ون ہے نا امبیرسمنٹ میں, انٹرنیشنل امبیرسمنٹ میں ہم نمبر ون ہے, آپ تو خالی نمبر ٹو ہی ہو گئے نا, آپ کا تو دو ہی نمبر ہے اوپر سب سے, ہم
کو بیٹ نہیں کر سکتے,
ہم کو بیٹ نہیں کر سکتے, نہ جی نہ بالکل نہیں, خاص طور پہ کینیڈا کا وہ حصہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ہیں جی, ان کو تو بالکل آپ بیٹ نہیں کر سکتے. اچھا اچھا چلو جی ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ کے منسٹر آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ کوآپریشن جو ہیں نالیدی پندر, انہوں نے آج بہت سخت ایلیگیشنز اسرائیل کے اوپر لگائے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل شوڈ بی کلاسیفائڈ ایز این اپارتھائڈ اسٹیٹ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ورسٹ ظلم کر رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر اور اپنی ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں اور سیٹلمنٹس کر رہا ہے اسرائیل ویسٹ بینک کے ایریے میں, یہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی, اور پیلسٹینین کا جو نیریٹو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ ہمارا ساؤتھ افریقہ کا تھا انڈر یہ جو ہے برٹش رول, اور جتنی ریشل انکوالٹی ڈسکریمنیشن اور ڈینائلز ہم نے فیس کیے ہیں ویسے ہی فیس کر رہے ہیں پیلسٹینینز بھی, تو ہم سے زیادہ اس چیز کو جو ہے کون اچھا سمجھ سکتا ہے. آج ہی اپنا ایڈریس کر رہی تھیں یونائٹڈ نیشنز جو جنرل اسمبلی ہے اس میں, اور انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی اسٹیبلش کرنی چاہیے جو کہ یہ دیکھے کہ کیا انہوں نے اپارتھائڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کی ساری ریکوائرمنٹس یہ پوری کرتے ہیں کہ نہیں. پیلسٹینین فارن منسٹر ریاض ملکی جو ہیں انہوں نے بھی یہ ایگری کیا ان کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ ہماری تکلیف جو ہے ساؤتھ افریقہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے.
کیا آپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انوالو ہیں اور آپ کو بہترین لائر کی تلاش ہے؟ ہیموفار پریزنس کی آپ کے لیے ایک جانا پہچانا لائر ہے, اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کے مسئلوں کو ان تک پہنچاتی ہوں. ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. کار ایکسیڈنٹ میں آپ کا مشورہ لینا آپ کا قانونی حق ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 416-570-0157, جی ہاں 416-570-0157.
اب مورگیج لینا اور بھی آسان, سینٹرم فیوچر مارکیج گروپ کے کاکب جاوید کو کال کریں. پرائیویٹ مارکیج فار اینی پرپزز, کمرشل مارکیج, انڈسٹریل مارکیج, فارم اینڈ ہابی فارم, ویری کمپیریبل ریٹس فار فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارکیج, نیو کمرز ٹو کینیڈا, فرسٹ ٹائم بائرز, سیلف امپلائڈ, ری فائنینسنگ, ڈیپ کنسالیڈیشن, اسسٹ ان ریئل اسٹیٹ, ہی ول میک مارکیج ایزی فار یو. کاکب جاوید مارکیج ایجنٹ 416-454-6065.
دانتوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے بل بہت زیادہ بتا دیا, سوچتی ہوں بیک ہوم جا کے دانتوں کا مکمل علاج کراؤں.
چھوڑو بھائی, کنگ بیسٹ اسمائل ڈینٹسٹ جی کو وزٹ کر لو. دانت نکالنا ہو, کراؤنز, بریجز, ڈینچرز, امپلانٹس, بچوں کے دانتوں کا مکمل علاج, روٹ کینال ٹریٹمنٹ, اور نئے پیشنٹس کے لیے فری الیکٹریکل ٹوتھ برش بھی ہے. کنسلٹیشن از ایبسولوٹلی فار فری.
پر جانا کہاں ہے؟
288 کنگ اسٹریٹ ویسٹ ہیملٹن میں, 905-521-0540.
جیوے 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 پاکستان, جشن آزادی پاکستان منائے ایکٹیو مارکیٹ پلیس کے ساتھ ایجیکس میں. سنڈے 14 اگست 10 بجے صبح سے لے کے 9 بجے رات تک رنگا رنگ تقریبات, ملی نغمے اور مزیدار کھانے. اپنے بوتھ یا اسپانسرشپ کے لیے کال کیجیے 416-230-1906. ایکٹیو مارکیٹ پلیس, فلی مارکیٹ, 19 نوشن روڈ, ایجیکس.
جی
हाँ जी, अच्छा जी, आज यूएस और तालिबान ऑफिशियल्स जो हैं उनके बीच में बातचीत फिर से चल पड़ी है। आपको पता ही है कि कोई ओवर $9 बिलियन के करीब जो है अफगान मनी जो है वो बाहर इनके जो रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है उसके अंदर वहां पे पड़े हुए हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर जो है बहुत सारे जो इनके जो टॉप गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं और जो बैंकों के भी ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक आप अपने यानी कि तरीके ठीक नहीं करोगे हम आपके जो हैं पैहे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब ये है कि इनकी जो हालत है अफगानिस्तान की वो बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है, और वो कहते हैं जी एक ट्रस्ट आप कायम कर दें, बेशक उस ट्रस्ट को आप लोग हैंडल कर लें, अमेरिकन या यूरोपियंस जो हैं वो कर लें, लेकिन ताकि उनको पता चले कि वो पैसा किसके पास आ रहा है और किस चीज के लिए आ रहा है। जैसे कि अगर हमें खाने के लिए चीजें चाहिए या मेडिसिन चाहिए, आप वो पैसा हमारा यूज करके खरीद के हमको चीजें भेज दो, ताकि आपको पता चले कि इन्हीं चीजों के लिए जो है हमें ये आ रहे हैं। अच्छा, बातचीत अभी इनके पास चल रही है, लेकिन अंदर की खबर यह भी है कि कोई इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे सहमति नहीं हुई है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं फिर से यूरोपियंस के भाई आप विमेन राइट्स दें, लड़कियों को स्कूल वापस जाने दें, ये जो सारे अपने पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग रखे हुए हैं इनको आप हटाएं। तो अब इनकी जो है हालत खराब हो रही है, क्योंकि जैसे ही तालिबान ने जो है वो टेक ओवर किया था तो इनकी फॉरन एड जो थी फॉरन बंद हो गई थी, सारे जो इंटरनेशनल एनजीओ थे वो बाहर आ गए थे, अब यहां पर ड्राउट भी आ रहा है, और आपको पता ही है कि अभी जून के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसमें 1000 बंदे की डेथ भी हो गई थी, और जो एक्सपर्ट्स हैं और यूनाइटेड नेशंस जो है वो ये कह रही है कि अब ये जो अब ये सेकंड विंटर होएगा ये आने वाला जो है जिसमें कि इनके पास खाने के लिए इनफ नहीं होएगा, तो उसके लिए उन सब चीजों के लिए खासतौर पे फूड एंड मेडिसिन के लिए इनको पैसे चाहिए। तो अब ना तो तालिबान झुकने को तैयार है ना तो यूरोपियंस झुकने को तैयार है, तो वो पैहा जो है इनका वो बड़ा सड़ रहा है बैंकों के अंदर। तो इस वास्ते माजिद भाई पैहा जो है वो अपने पास रखो, अंकल सैम के किसी कैंट में किसी बैंक में ना रखो, वो फड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है, हैं जी ऐसे होते हैं ओके ऐसा काम नहीं करना, वो कहते हैं जाओ छुट्टी करो, तो ऐसे नहीं, अपना पैसा अपने मुल्क में रखो जी, ठीक है जी ऐसे। न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब आज एक ये अगेन बहुत ही चौंका देने वाली खबर है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको पता ही हम आपको बहुत दिनों से कोई दो हफ्ते से बता रहे हैं कि जो 6 जनवरी को कैपिटल हिल के ऊपर जो राइट्स हुए थे उसके ऊपर एक जो है हाउस कमेटी जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी वो बैठी हुई है और वो डिफरेंट लोगों को बुला रही है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बंदे को बुलाया, आज उन्होंने बुलाया है मार्क शॉर्ट को। मार्क शॉर्ट जो है वो माइक पेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, वो लोग जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो इनको देख सकेंगे, माइक पेंस के साथ ये खड़े हुए हैं, उसके लिए ये ग्रैंड जूरी के सामने इनको टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने बताया है कि यस मुझे सपीना किया गया था लास्ट वीक और मैं बिल्कुल उसके साथ कंप्लाई करूंगा, और जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वैसे तो अभी तक ये इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही अंडर रैप्स रख रहा है, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों को बुलाया जा रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि कौन कौन आ रहे हैं। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे हैं, इन्होंने सर्व किया है चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पेंस फॉर 2 ईयर्स, इसके अलावा जो है इन्होंने जो है वो किया था जो ट्रंप साहब थे उनके साथ भी इन्होंने एज लेजिस्लेटिव अफेयर्स डायरेक्टर जो था वो काम किया था। वो कहते हैं उनके बारे में जो अभी रिपोर्ट आई है जो ये जो जनवरी 6 की कमेटी के सामने गए हैं, वो कहते हैं जी कि मैंने वार्न किया था उसी वक्त माइक पेंस साहब को कि आपका जो ये सीक्रेट सर्विस एजेंट है इसको बोलें कि ये जो ट्रंप साहब कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको आप मना करें। तो पेंस साहब जो हैं उन्होंने मेरी बात सुन ली थी। अब ये कहता है जी मुझे पता नहीं है कि प्रेसिडेंट को, हालांकि पेंस साहब जो हैं उन्होंने भी एक दो जगह पे कहा अभी तक तो वो कमेटी के सामने नहीं आए, और बाकी के लोग जो हैं वो कहते हैं हमने कहा था ट्रंप साहब को कि ये जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो है आज इसने मार्क शॉर्ट ने, और इसकी भी टेस्टिमनी बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है, वो कहते हैं जी हमने इनको बता दिया था और मैंने इनको कहा था कि आप ये जो ट्रंप साहब हैं इनको बता दें कि ये चीजें जो हैं बड़ी क्रिटिकल हो सकती हैं, ये ठीक नहीं है और जो है ये आप करें। तो वो कहते हैं भरत जी इसके अंदर काफी लैप्सेस थे और वो लैप्सेस इसीलिए थे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज भी थी उनको भी पता नहीं था कि जो ट्रंप साहब हैं वो क्या करने वाले हैं या क्या खिचड़ी पकाई जा रही है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ जिसमें इतने लोगों की डेथ भी हुई और इतना जो है अमेरिका का नाम भी खराब हुआ। तो ये आज बड़ी मेजर रिपोर्ट जी कवर की है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है जी, कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो हमने आपको ये गुप्ता ब्रदर्स की पूरी स्टोरी सुनाई थी और हमने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये काम करते थे और वहां पे ये बहुत बड़ा अपना बिजनेस चलाते थे और वहां के जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स जो थे स्पेशली जूमा साहब उनके बड़े क्लोज थे। तो आज साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने एक एक्स्ट्राडिशन का एप्लीकेशन डाला है यूएई को कि ये राजेश और अतुल गुप्ता जो हैं इंडियन बॉर्न ब्रदर्स ऑफ गुप्ता फैमिली, एक्सट्रीमली वेल्दी साउथ अफ्रीकन ये फैमिली है, और इनके जो तीसरे भाई हैं अजय गुप्ता उनको जो कि सेल्फ एग्जाइल में ये लोग दुबई में रह रहे हैं, इनको जो है वापस बुलाया जाए। लेकिन जाहिर है कि अभी तो एक्सट्रेडिशन एप्लीकेशन डाली है, इसमें काफी टाइम लगेगा। इसके इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने मिलियंस ऑफ नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स को जो है वो स्टेट एंटरप्राइजेस जो हैं उनसे चुराया है और उनको मिसयूज किया है, क्योंकि ये एक्स प्रेसिडेंट जेकब जूमा के बड़े क्लोज थे। हेड ऑफ नेशनल प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी शमीला बटोही ने जो है वो अब जो इनको ज्वाइन किया है जस्टिस एंड करेक्शनल सर्विसेज को, उन्होंने आज मीडिया को जो है वो ब्रीफ किया था और उन्होंने कहा जी कि एनपीए जो है हमारी उसने एक एप्लीकेशन डाली है यूएई को, क्योंकि यूएई के अंदर ये तीनों जो है ये अरेस्ट हो चुके हैं अलेजली, या तो तीनों हो गए हैं या एटलीस्ट दो ब्रदर्स जो हैं ये राजेश और अतुल गुप्ता, उनको दुबई की पुलिस ने एटलीस्ट जो है वो पकड़ा। तो अब हम कह रहे हैं कि हमको एक्सट्राडाइट करें।
नाउ व्हाट आर दोस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स गोना डू?
या
दे गोना गो बिहाइंड द बार्स।
तो यही है जनाब। आज जनाब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ना आजकल इंडिया में, वो बड़ी आजकल छाई छुई हुई है और वो काफी लोगों को फड़छड़ रही है, हैं जी। अब सही फड़ रही है कि गलत, वो आप उसका अंदाजा खुद लगाएं। लेकिन जी आज जो है इन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो है वो इनको चार्जशीट भेजी है या की है, चार्जशीट की है ये जो जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके अगेंस्ट, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो फंड था उसमें आपने स्कैम किया था और आप जो है बेनिफिशरी थे, आप मिर्जा ब्रदर्स मीर मंजूर गजनफर एहसन अहमद मिर्जा, और ये आपने 21.5 करोड़ इंडियन रुपीज का जो है वो घोटाला किया है। हालांकि ये सारे चार्जेस जो हैं इनके लिए इन्होंने डिनाई किया है, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं हमने किए हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन जो थी असल में ईडीए ने इसलिए शुरू किया है कि सीबीआई ने ये केस जो था उनको भेजा था, जो कि जिसको कि ये प्रूव कर रही थी 11 जुलाई 2018 से, और उन्होंने कहा था कि इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारे का सारा पैसा अलेजली ये लोग खुद खा पी गए थे और इन्होंने जो है क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर नहीं लगाया है। तो अब इनको कोर्ट ने कहा है, स्पेशल कोर्ट जो है उसने कहा है जी कि आप अगस्त 27 को अपीयर हुए और जवाब दें इस चीज का। राहुल गांधी साहब जो है उनको जी कांग्रेस के लीडर, उनको आज न्यू दिल्ली के डेली के अंदर जो है डिटेन किया गया है अलॉन्ग विद सम अदर कांग्रेस लीडर्स, इसलिए कि वो एक मोर्चा निकाल रहे थे क्योंकि उनकी मां जो है सोनिया गांधी जी उनको पकड़ के एनफोर्स डायरेक्टरेट आज फिर से ले गई है और ये दूसरी बार इनको लेकर गई है, तो उसके लिए राहुल गांधी जी जो हैं उनको रोका गया और उनको कहा गया जी कि आप हमको ईडी को काम करने दें। ये इनके ऊपर जो प्रोब चल रही है वो फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज है, जो कि वो कहती है ईडी कहती है विच टुक प्लेस अंडर कांग्रेस प्रोमोटेड यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड स्कीम, जिसको के चलाते थे ये जिसको के ओन करते थे नेशनल हेराल्ड वाले न्यूज़पेपर वाले, तो इनको जो है उसमें प्रोब किया जा रहा है। अब ये जब मोर्चा उन्होंने निकाला और इनको डिटेन किया तो ये जाके पार्लियामेंट के जो बाहर पहले तो इनको जो पुलिस स्टेशन है वहां पे विजय चौक में वहां ले गए, फिर उसके बाद ये खुद आके वहां पे बैठ गए और इन्होंने कहा कि मेरी मां को आप लेकर गए हैं तो ये ठीक नहीं है। कांग्रेस के जो लीडर हैं सचिन पायलट, उन्होंने आज सेंटर की गवर्नमेंट पे बड़े जो है वो उंगली उठाई है और उन्होंने कहा कि आप एजेंसीज को यूज कर रहे हैं जो अपोजिशन है उसको टारगेट करने के लिए और हमें डराने धमकाने के लिए, और उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट जो भी बनी है कल द्रौपदी मुर्मू, उनको कहा है कि भाई आपको जब भी हम गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन करते हैं कि चीजों की प्राइसेस जो है वो ऊपर क्यों जा रही है या पेट्रोल की प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, तो वो हमारे खिलाफ जो ऐसे मोर्चे निकालती है, तो इनको आप जो हैं रोकें। और जो है तकरीबन बहुत सारे जो लोग थे 50 के करीब जो कांग्रेस के एमपीज थे वो राहुल गांधी के जी के साथ थे और वो जो हैं अब वहां पे बैठे हुए और धरना जो है वो दे रहे हैं। हिंदुस्तान की जो गुजरात स्टेट है उसके अंदर ठर्रा पीने से 28 लोगों की डेथ हो गई है और 60 लोग जो हैं वो बेतहाशा बीमार हो गए हैं। ये देखें जी ये पुलिस ने ये सारे इनको बहुत सारे जो बूट लेगर्स हैं उनको वहां पे पकड़ा है और वो कहते हैं जी सीनियर पुलिस जो हैं मुकेश परमार वो कहते हैं जी कि ये अहमदाबाद और बोटंग के बोटड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात में वहां पे हुई हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ये जो अल्कोहल होती है उसके अंदर जो है उसको बहुत ज्यादा करने के लिए उसको चीप बनाने के लिए ताकि हर कोई उसको पी सके उसके अंदर जो है डिफरेंट केमिकल्स मिक्स करते हैं, यहां तक कि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं ताकि उसकी जो है किक ज्यादा आए। तो अब जाहिर है आप सोचें कि एक तो शराब हाँ गैसलीन, तो अगर आप सोचें कि शराब है एक तो नंबर वन, ऊपर से उसके अंदर अगर पेस्टिसाइड या कि गैसलीन है तो वो आपके सिस्टम में क्या करेगी, मरेगी ना आपको। तो ये वैसे काफी कॉमन है इंडिया के अंदर ठर्रा पीना, ठर्रे से काफी डेथ्स होती हैं। हैं वहां पे। तो बहरहाल जी ये आज उधर 28 डेथ्स हैं और वो 60 लोगों की हालत जो है वो भी खराब है, लग नहीं रहा कि उनमें से भी कोई बचेगा। आज बहुत बड़ी जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी न्यूज थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी हैं उनका जो रूलिंग थी कि जी वो 10 वोट मैं नहीं लूंगा पीएमएलएनक्यू के, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जिता दिया था, उसको आज स्ट्राइक डाउन किया और उन्होंने कहा दिस इज इन जो है वो करेक्ट एंड इरोनियस एंड दिस इज अगेंस्ट द आर्टिकल 63A(1)(b) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिसेज एजाजुल एहसान और मुनीब अख्तर ने कहा कि आप फौरन जो हैं ये जितने भी वो जो कल हमने अनाउंस किए थे संतरी मंत्री जितने भी बने हैं उन सबको कहा है कि अपनी सीटें छोड़ो, और शहबाज शरीफ साहब को भी कहा अपनी सीट छोड़ो, क्योंकि 10 जो लोग जिनके के बारे में आपने कहा जी कि मुझे जो है चौधरी साहब का फोन आया कि ये 10 जो वोट हैं ये शहबाज रमजा शरीफ को दिए जाएं, वो बिल्कुल हम नहीं दे रहे हैं उनको, वो पीटीआई की गवर्नमेंट को ही देने पड़ेंगे। एज अ रिजल्ट जो पीटीआई का कैंडिडेट है चौधरी परवेज लाई वो अब जो है वो बनेंगे इसमें, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है
2 बजे का टाइम दिया था टोरंटो 2 o'clock, अभी तक तो
हो गया। हाँ जी हाँ जी, तो वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट है पार्टी के चौधरी शुजात हुसैन उनका मुझे लेटर आया, उन्होंने कहा कि ये लेटर आने पे ये बातें नहीं चलती, उनकी अपनी खुद की मर्जी है वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो आपने कहा जी वो 10 वोट निकाल के उसके खाते में डाल दो, ऐसे नहीं होता, जिसने जिसके लिए वोट दिया है वो वैसे ही होता है। तो अब एज अ रिजल्ट जो है ये दे हैव लॉस्ट नाउ, उन्होंने कहा फौरन अपनी सारी की सारी जो है वो आप छोड़ दें अपनी सीटें। वहां वो उनको कहा जी कि ये सारे ये जो 50 बंदे आपने बनाए हैं ना इन सबको निकालो आप, ये कोई ना संतरी ना मंत्री ना कोई एडवाइजर ना कोई सेक्रेटरी ते ना कोई मिनिस्टर कुछ भी, फौरन अपनी सीटें छोड़ेंगे, जो परवेज इलाही है वो अपनी अब कैबिनेट बनाएगा। अच्छा आज जो है इस्लामाबाद के अंदर हो रहा था जी, एक जर्नलिस्ट जो हैं वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मिले हैं और उनसे आज उन्होंने बड़े सख्त किस्म के सवाल किए हैं जिनके उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं प्रेसिडेंट साहब ने। उन्होंने कहा जी, एक तो जर्नलिस्टों ने कहा कि आपको क्या लगता है कि जो जनरल बाजवा हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको अपनी जो उनकी टेन्योर है उसकी एक्सपायरी से पहले उनको जो है निकाला जा सकता है, तो नेक्स्ट चीफ जो है उसको उनकी एक्सपायरी से पहले, यानी कि निकाला क्या जा रहा है वो उनसे पहले ही, यानी कि उनके होते हुए ही दूसरे किसी आदमी का नाम जो है सुनाया जा सकता है कि अब नेक्स्ट आर्मी चीफ जो है वो ये होगा, क्योंकि इनकी जो टर्म है वो खत्म हो रही है 29 नवंबर को, इनको 2 दफा जो है जो एक्सटेंशन दी गई थी पीटीआई की गवर्नमेंट ने इन 2019, तो अब इनकी जो है, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ बिल्कुल हम नए जो दूसरा कोई हार्म नहीं है इसके अंदर कि अगर नेक्स्ट आर्मी चीफ जो है उसको अपॉइंट कर दिया जाए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डॉक्टर सॉरी जनरल बाजवाज टेन्योर। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि जी आर्मी का ये जो क्या रोल हो सकता है अभी जो इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, क्या आर्मी आ सकती है? इन्होंने कहा वैसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो सिविल जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आर्मी का कोई रोल नहीं है। ये प्रेसिडेंट साहब ने कहा, बड़ी बहादुरी की बात की भाई। और उन्होंने कहा जी कि आप क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब? उन्होंने कहा जी वैसे मेरा भी कोई रोल नहीं है जो जिस वक्त पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस और मेरी गुड सर्विसेज कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज करना चाहती हैं और बैठना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि मैं इनके बीच में सुलझाओ लाऊं और इनकी दोस्ती कराऊं तो मैं जो है वो करने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा जी कि आपको लगता है कि मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए? उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मेरा पूरा फेथ है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, तो उसको इसी तरह से जो है वो चलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ऊपर नीचे चढ़ाव आते हैं लेकिन डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है आपकी एक दूसरे के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से। आईएसपीआर जो है जी उसकी आज एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान मिलिट्री के जो लोग हैं वो सारा जो कुछ भी क्वेटा के अंदर और सिंध के अंदर जो फ्लड्स आए हुए हैं उसके अंदर रिलीफ का वो जो है काम दे रहे हैं। ये देखें माजिद भाई, जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको वो तस्वीरें नजर आएंगी। तो उन्होंने कहा जी कि जहां जहां फ्लडिंग है उसको वहां पर डी वॉटरिंग किया जा रहा है और बेसिक फूड और मेडिसन और नेसेसिटीज जो है अफेक्टेड पॉपुलेशन को सप्लाई की जा रही है, और ये जो रिलीफ का काम है ज्यादातर जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में, घेरो ग्रिड स्टेशन के पास, कराची में के साउथ में शेरा फैसल का जो इलाका है और निपा चौरंगी और लसबेला और तुरबत और क्वेटा, इन सब जगह पे हमने रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और मेडिकल फैसिलिटीज और चीजें जो है खाने की वो भी दे रहे हैं। तो हमारी टीम्स जो हैं वो जगह जगह पे इन दो सूबों के अंदर स्टेशन है और जिस जिसको जब जब हेल्प चाहिए तो मिलिट्री उनकी हेल्प कर रही है। आज इंडिया की जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है उसके प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हम वॉलंटरली अपनी तमाम प्रोडक्शन जो है उसको शट डाउन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं जी कि ये जो है स्टार्टिंग अगस्त 1 कोई भी शूट नहीं आगे लेके जाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये जो हैदराबाद एक्टिव तेलुगु प्रोड्यूसर्स गिल्ड है उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो पहले पेंडेमिक चल रहा था और अब जो इन्फ्लेशन बेतहाशा हो गई है तो हमारे लिए रेवेन्यूज और कॉस्ट को मेंटेन रखना जो है बेतहाशा मुश्किल हो गया है, तो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये कॉस्ट जो है इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो जिस वक्त तक हमको कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी तो अब हम इस चीज को आगे नहीं लेकर जाएंगे। तो पायान फिर 500 करोड़ दी फिल्म ना बनाओ, ना कोई छोटी फिल्म बना लो, थोड़ी तो कोई भी साउथ वाले की फिल्म 500 करोड़ को कट नहीं आती पायान, कोई रहम करो कोई गरीबों से मतलब की मजाक है, लेकिन क्या फिल्में बनाते हैं, ओ माई गॉड, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, अमेजिंग। अच्छा जी, शमशेरा आई जनाब बड़े अरसे के बाद रणवीर कपूर साहब की, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी है कि नहीं, इनकी बड़ी कामयाब 4 साल पहले फिल्म आई थी संजू, संजय दत्त के ऊपर वो बायोपिक थी जिसका मैं रोल किया था और बड़ी ही वो सक्सेसफुली थी। उसके बाद ये पहली बार 4 साल में फिल्म में आ रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक बीच में आ गया था और लोगों का बड़ा ख्याल था कि शमशेरा में जो इनका लुक है, डबल रोल है और जिस तरह के जबरदस्त स्टार्स हैं संजय दत्त थी और वो वाणी कपूर हैं, तो वो समझ रहे थे कि बड़ी जबरदस्त ये फिल्म करेगी, लेकिन जी ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ भी अच्छा नहीं कर सकी। आपको पता ही है कि इसका जो बजट था 150 करोड़ के बजट के ऊपर ये फिल्म बनी थी और इसने जो है 65% मंडे से लेकर अब तक जो हम आपको खबर सुना रहे हैं इसकी जो सेल्स हैं वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नीचे आ चुकी हैं। इसने अभी तक जो है वो जो तकरीबन 34 करोड़ के पास जो है सिर्फ टोटल 34 करोड़, एक वीक हो गया, 150 करोड़ जी, 150 करोड़ है, तो वो कहते हैं जी सिर्फ 34 करोड़ की अभी तक रिकवरी हुई है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40 से 41 करोड़ तक ही ये जाएगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि लोगों को ज्यादा ये पसंद नहीं आ रही है फिल्म। हाँ जी, तो डूब गया पैसे इसीलिए हम कह रहे हैं इतने पैसे ना लगाओ फिल्मों पे, ऊपर जाके क्या जवाब दोगे, ये पैसा किसी गरीब को दे दो, है मजे से
$1 million।
अच्छा जी, अच्छा जनाब, हमने आपको कुछ अर्सा पहले बताई थी ये खबर कोई 2-3 महीने पहले कि एक फिल्म जो है वो जॉइंट उसमें कोलैबोरेशन में बन रही है, आलिया भट्ट और शाहरुख खान जो है वो मिलकर बना रहे हैं, उस फिल्म का नाम है डार्लिंग्स, ठीक है जी। तो ये जो है इनकी शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट अलॉन्ग विद द बैनर ऑफ इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस जो कि आलिया भट्ट की है उसके साथ ये फिल्म बना रहे हैं। तो ये फिल्म अब आने वाली है नेटफ्लिक्स को, August 5 को ये आएगी, ये एक डार्क कॉमेडी है, मुंबई बेस्ड है, तो उसके लिए इसने एक ट्वीट किया है आलिया भट्ट ने कि मैं अपने नेल्स बाइट कर रही हूं और मैं बड़ी एंक्शस हूं और सो एक्साइटेड हूं और मैं जो अपना डिक्टेटोरियल डेब्यू कर रही है, ये डायरेक्टर है इस मूवी की और वो कह रही है कि ये इसकी इस फिल्म को प्रोड्यूसर है सॉरी इस मूवी की और वो कह रही है कि इसको जो डेब्यू कर रहे हैं राइटर जस्मीन रीन, तो वो आपको बड़ी जबरदस्त ये लगेगी। तो उसके ऊपर जवाब दिया उसकी ट्वीट पे शाहरुख खान ने कि मैं भी बहुत एंक्शस हूं और मैं भी अपने जो है नेल्स बाइट कर रहा हूं इस की रिलीज से पहले।
बीमारी है कोई
है,
ये कोई बीमारी है?
नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे है ना
बीमारी,
वो इन्होंने एक कैरेक्टर भी किया था ना किरण, ठीक है जी। अच्छा जी, और जनाब हमारी जो रावलपिंडी एक्सप्रेस है शोएब अख्तर साहब, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर एक बायोपिक बन रही है और उसका नाम ही रावलपिंडी एक्सप्रेस है और ये फिल्म जो है इसको ये अभी प्रोडक्शन में है, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं फराज कैसर और प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू फिल्म प्रोडक्शन वाले, वो कह रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फिल्म टू बी मेड ऑन द लाइफ ऑफ अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, तो वो बड़े एक्साइटेड हैं, तो उसका पोस्टर जो है आज इन्होंने शेयर किया है। इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं अजीम रफीक, वो कहते हैं जी आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माय एक्स स्कॉटलैंड क्रिकेटर फ्रेंड्स लाइक मजीद हक एंड कासिम शेख, जिन्होंने कि बड़ी जुर्रत दिखाई और रेसिज्म जो उनके साथ क्रिकेट स्कॉटलैंड में होता था उसको वो सामने लेकर आए और जो है आपको पता ही है कि इनकी एलिगेशन के बाद बड़ा सख्त इसका नोटिस लिया गया था क्रिकेट स्कॉटलैंड ने और उन्होंने कहा था कि ये जो गवर्नर्स और जो लीडरशिप के मसले थे वो थे, उन्होंने एग्री किया था। तो वो कहते हैं जी कि मेरे साथ भी मैंने भी ये बहुत सारा अब्यूज जो था फेस किया था और मैं जब सामने लाया था, ये रफीक साहब कह रहे हैं कि ये जब यॉर्कशायर के लिए खेलते थे तो मैं भी ऐसा बहुत ज्यादा फेस करता था रेसिज्म, तो जब इनके भी एलिगेशन आए थे तो यूके की क्रिकेट जो है लास्ट ईयर उसमें तूफान आ गया था और उन्होंने कहा था कि सब लोगों ने ब्रीच किए थे ये जो कोड ऑफ कंडक्ट थे, तो ये इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी, तो आज उसी के ऊपर उन्होंने कहा कि ये लोग भी जब सामने आए हैं तो जाहिर है मेरा केस भी ना सिर्फ ये कि स्ट्रांग हुआ बल्कि ये लोगों को पता चला कि जो मैं कह रहा था वो ठीक है और इनकी जरूरत जो है उसको भी सलाम है। आज जनाब एक आपको पता ही, हमने आपको बताया था पिछले दिनों में कि हॉकी कनाडा जो है उसके ऊपर अप्रोव चल रही है सेक्सुअल हरेसमेंट केसेस के ऊपर, क्योंकि बहुत सीरियस है. आज उसके अंदर बहुत ही खतरे में नाक ये स्टेटमेंट जो है ये इन्होंने मिशेल रिस्ट ने दी है, जो कि सीनियर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स कनाडा है. इन्होंने कहा जी कि मैंने बहुत ही पहले जो स्पोर्ट्स कनाडा था उसको ये जो अलेज्ड सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस थे, असॉल्ट के केसेस थे, मैंने इनको बताए थे, और जो कि ये हॉकी टीम के मेंबर्स ने लेट जून 2018 में किए थे, और लेकिन इन्होंने जो है हॉकी कनाडा के साथ फॉलो अप ही नहीं किया है.
इजी सॉल्यूशन है इसका. इजी बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि भाई इनकी जैसे कैनेडियन टायर है, वॉलमार्ट है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना,
स्पॉन्सरशिप
वापस ले ली इनसे. अब ऑफ कोर्स दे हैव टू हैव मनी टू रन एंड इट्स अ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस. तो या तो ये कि इसको
उन सारे प्लेयर्स को ही निकालना चाहिए ना माजिद भाई, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन को तो सजा नहीं देनी चाहिए. वो ऑफिशियल्स, वो प्लेयर्स
ने क्या किया?
हाँ, वही ऑफिशियल्स एंड प्लेयर्स.
तो जितनी भी लीडरशिप है ना
उनको खत्म करने की जरूरत है.
टॉप टू बॉटम लीडरशिप जितनी है इनकी, पूरी की पूरी लीडरशिप को बदल के नई लीडरशिप लाई जाए, नया ब्लड लाया जाए उसके अंदर.
नहीं नहीं, नए ब्लड की जरूरत नहीं, मैं और आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे. देखिए ना, आपको फर्स्ट चॉइस की बात है ना माजिद भाई, आपको कितना पता है नीले जेज के बारे में? हाँ, नीले जेज आपके कितने, फिर आपको टोरंटो रैप्टर्स के बारे में कितना पता है? फिर ये जो फ्लेमे हैं इनके बारे में आपको कितना पता है? हमें सारा क्रिकेट का पता है. तो हम तो बिल्कुल सही हैं इस स्पोर्ट्स के लिए.
हॉकी क्या है?
हाँ, हॉकी कनाडा.
हाँ जी,
उसमें हमें रखा जाए. हाँ बिल्कुल,
देख ले.
हाँ देख ले जी, हमने ऑफर दे दी अपनी.
अब लेना ना लोगे आपका लॉस,
आपका लॉस.
तो मगर ये के सीरियसली इनका जो जितनी भी लीडरशिप है वो लीडरशिप को निकाल के नई लीडरशिप लाई जाए यहाँ पर एंड स्टार्ट बैक टू जीरो अगेन.
जी अच्छा, ये जो इनकी क्वेश्चनिंग हो रही थी हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी के अंदर आज, तो उसमें इन्होंने बताया है, क्योंकि एमपीज भी बड़े भड़के हुए थे. उन्होंने कहा कि ये कैसे स्पोर्ट्स के अंदर ये चीजें कैसे चल रही हैं. तो उन्होंने कहा जी कि मैंने जब इनको बताया था तो इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक को नहीं बताया. स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो थे उस वक्त की वो थी केंट हेयर. तो उन्होंने कहा जी उसके ऑफिस को पता ही नहीं है. और ये जो अब की जो करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर है पेस्कैल सेंट ओगेन, उनके बारे में भी कहा गया, उनसे पूछा गया कि आपको पता है, वो कहती है कि नहीं मुझे तो ये अभी पता चला रिसेंटली, जब ये सारी चीजें जो है यानी कि जब मीडिया में आई होंगी तभी, तो मुझे भी नहीं पता था. तो वो कहती है जी कि ये जो 8 हॉकी के प्लेयर्स थे, इन्होंने जो कुछ उस लड़की के साथ किया था, क्योंकि कंप्लेंट बेसिकली उसी ने किया थी कि 2018 की ये जो जूनियर हॉकी टीम थी, इसने वो जो गाला हो रहा था लंडन ऑन्टेरियो के अंदर इसका, तो उसके अंदर जो है मेरे साथ बदतमीजी की थी. और उन्होंने कहा जी इन्होंने तो कोई उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि जी वो हॉकी के स्टार्स थे और वट एवर द रीजन माइट बी. तो वो कहते हैं इनको बताया हुआ था, मैंने इनको बताया था लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज फ्रॉम वॉशिंगटन पोस्ट. वॉशिंगटन पोस्ट की ये जो रिपोर्ट है इसमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिकन काफी ट्रंप साहब पे भड़के हुए हैं. अब क्यों भड़के हुए हैं? हमने आपको थोड़े दिन पहले खबर सुनाई थी है जी कि ये जो होती है गोल्फ की जो होती हैं सारे ये जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ये इसको अब डाइवर्ट उनसे कर रहा है जो सऊदी का जो लिव है, एल आई वी वाले जो हैं, लिव गोल्फ वाले जो हैं वो. और हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो हैं ट्रंप साहब, इन्होंने कहा था कि जो मेरे गोल्फ क्लब्स हैं जो कि बेडमिंस्टर न्यू जर्सी के अंदर जो क्लब है और दूसरे हैं, वहां पे ये हम होल्ड करेंगे लिव गोल्फ के केसेस. तो इसके ऊपर लोगों ने कहा है कि तुमने तो कहा था जब तुम इलेक्शन ट्रेल पे थे कि सितंबर 11, 2001 के जो ये अटैक्स हुए हैं उनके अंदर जो लोगों ने इतनी जो 700 के करीब लोगों ने जो है वो अपनी लाइव्स लूज की थी, तो उनके फैमिली और फ्रेंड्स को तो तुम बड़ा टॉर्चर कर रहे हो, तुम कैसे ये सऊदी बैक और सऊदी फंडेड जो एक सीरीज है उसको तुम अपने ही क्लब्स पे कैसे कर रहे हो? तो इन्होंने आज एक लेटर लिखा है ट्रंप साहब को. उन्होंने कहा है कि 9/11 की जो फैमिलीज हैं, उन्होंने जब आपने इलेक्शन ट्रेल पे थे तो आपने कहा था कि मैं कहूंगा इसको FBI को कि तमाम जो है ये इन अटैक की जो फाइल्स हैं उनको डीक्लासीफाई करो ताकि लोगों को पता चले असल में कौन लोग इन्वॉल्व थे. तो हमें तो पता ही है कि इसके अंदर सऊदीज इन्वॉल्व थे, तो तुम कैसे इनका टूर्नामेंट यहां पर कर रहे हो? यह जो आप टूर्नामेंट है यह स्केड्यूल्ड है July 29 से 31 में, और फिर उसके बाद जो है इसकी क्लोजिंग सीजन जो है वो टीम चैंपियनशिप की वो इसके मायामी का जो कोर्स है ट्रंप साहब का डोरल गोल्फ क्लब उसमें होएगा अक्टूबर में, लेट अक्टूबर में.
ये जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई आप इसको ना करें क्योंकि वो
पीजीए वाले ज्यादा फेमस है ना.
सऊदीज आर इन्वॉल्व इन दिस 9/11. भाई सऊदीज आर इन्वॉल्व 9/11, गोल्फ टूर्नामेंट आप बंद कर दें ना कराएं, मगर ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप जो बिजनेस कर रहे हैं
एग्जैक्टली
वो उस वक्त
वो तो सूदियों के पास है.
उस वक्त आपको ये याद नहीं आता कि भाई हम उसमें.
लेकिन वैसे भी देखें ना माजिद भाई कि ये कैसे आप एक आदमी के एक्शन के लिए पूरी कौम को आप कैसे जो है वो करेंगे. देखे ना अब जैसे अब जो है अब कोई जो है अगर गलत पॉलिटिशियन है जैसे हमारे मुल्क में उसको देख के आप कैसे कहेंगे कि जी सारे जो है पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं. ये यू कांट रियली पुट अ टैग राइट. अगर कोई चार सऊदी लड़के थे जिन्होंने वो अटैक्स किए वो गलत, उसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी सऊदी कौम जो है वो टेररिस्ट है. इट्स नॉट पॉसिबल ना ऐसे. आप कर नहीं सकते. जैसे लड़ाई आपकी रशिया के साथ है, आपने कहा जी तमाम जो जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स है उसमें रशियन एथलीट्स, रशियन एथलीट्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट पॉलिसी राइट. दे आर जस्ट एथलीट्स, दे आर जस्ट प्लेयर्स. तो उनका या कोई एक म्यूजिशियन है, आप जो जितने भी अब ये एंटरटेनमेंट के भी इवेंट्स कर रहे हैं आप कह रहे हैं जी रशियन एंटरटेनर उसके अंदर कोई नहीं आ सकता. एक पियानो बजाने वाला जो है उसका वॉर के साथ क्या ताल्लुक है भाई. आप उसको क्यों वो कर रहे हैं. तो इसी तरह ये तो एक बिजनेस फैमिली है जो कि ये लिव गोल्फ करा रही है ठीक है, जिसने ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि भाई पीजीए से हटके भी कोई चीजें होनी चाहिए राइट. अब सारी जिंदगी आपके पास इधर हम कितना शोर मचा रहे हैं कि जी चूंकि तुम्हारे पास रॉजर्स और वो बेल है तो इसलिए इतनी लोग तकलीफ उठा रहे हैं, इनके रेट्स भी ज्यादा हैं, तुम लोगों ने मोनोपोली बनाई हुई है, किसी और को तुम लोग आने नहीं देते. हम नहीं शोर मचा रहे हैं भाई, तो पीजीए की मोनोपोली है तो भाई क्यों होनी चाहिए पीजीए की मोनोपोली. दूसरे लोगों को भी तो उस गेम में आना चाहिए ना, तो वो आएंगे तो वो करेंगे. तो ये जो बिजनेस फैमिली है उसका कोई ताल्लुक नहीं है सऊदी गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ.
Exactly.
तो आप हर किसी को जो है वो तो नहीं आप सजा दे सकते हैं. बालाजी वहां पे काफी तूफान मचा.
अगर किसी के पास है मींस के जनाब साबिक सदर जो है ट्रंप साहब, इनके पास अगर ये है फैसिलिटी एंड इफ यू वांट
गोल्फ क्लब्स हैं उसके सारे तो वो फायदा क्यों ना उठाए
एंड ही कैन मेक सम मनी आउट
ऑफ दैट. या
व्हाई नॉट,
क्योंकि उसके बाकी तो फिर आपने वो टैक्स के उसके ऊपर करके कि जी तुमने टैक्स नहीं दिए और तुमने जो है ये चीजें नहीं की और ऑलरेडी कितने एलिगेशंस किए हुए और कितने उनको कट किया हुआ है, तो कहीं से तो उसने फिर पैसे बनाने हैं ना भाई. तो उसके अब ये गोल्फ जो कोर्सेज, गोल्फ कोर्स को माजिद भाई कोई मेंटेन करना कोई आसान है.
इट
इन्वॉल्व मिलियंस ऑफ डॉलर्स. वो सिर्फ घास को ही मेंटेन करने में कितने पैसे जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो भाई उसने अपना बिजनेस भी तो चलाना है ना. अब कोई गोरा है काला है सऊदी है क्या है, अब वो चार लड़कों के लिए पूरी सऊदी कौम को तो नहीं आप सजा देंगे राइट.
नहीं मगर इट शुड वर्क बोथ वेज. क्या अगर भाई हमने क्योंकि कुछ लोग फ्रॉम सऊदी अरब वर इन्वॉल्व इन दिस 9/11 ओके, सो इसलिए हम उनसे गोल्फ टूर्नामेंट में उनका साथ नहीं देना चाहिए. तो भाई जो आपने 50 और 100 बिलियन डॉलर्स की जो डील की है आर्म्स की वो भी नहीं देना चाहिए.
वो भी नहीं फिर करने चाहिए. आर्म्स तो ज्यादा खतरनाक है, वो क्यों दे रहे
देना चाहिए आपको. कभी हम आपको उससे कोई डील ही नहीं कर रहे आप. और
जिस वक्त आर्म्स अपने बेचने हैं तब तो आपको सऊदी और ये कतारी और यूएई वाले सारे शेख याद आ जाते हैं. और दूसरी तरफ आपको जो ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं भाई. किसी एक ट्रैक पे चलो ना.
एग्जैक्टली
व्हाट इज दिस माजिद भाई.
एंटरटेनमेंट की बात करिए, यू नो ड्रेक राइट.
हाँ ये ऑफकोर्स नहीं, मैं मरीख में रहती हूँ माजिद भाई, मुझे नहीं ड्रेक का पता.
अच्छा वहीं से आई है.
हाँ वहीं से आई हूँ.
तो हारून भाई पूछ रहे थे कहाँ से आई.
हाँ वही तो हारून साहब ने कहा है कि मुझे आप इस दुनिया की मखलूक नहीं लग रही.
हाँ तो हारून भाई मरीख खुद ही ने कहा है. एनीवे देखिए अब मैं इसको स्टुपिडिटी कहूंगा ओके. जस्ट फ्यू डेज अगो
जी
ड्रेक ने उसका अपना जेट है बाय द वे उसका अपना जेट है उसका है
तो हमारा ही है हमने दिया हुआ है.
हाँ तो यहां से वो अपने जेट में बैठ के यहां से हैमिल्टन चला गया. कुछ काम था उसको हैमिल्टन में.
जेट में गया,
अपने जेट में गया.
गाड़ी में नहीं जाना था उसने.
इट टुक हिम 14 मिनट्स.
अच्छा
14 मिनट की फ्लाइट थी यहां से लेके वहां तक पहुंच गया वो. हो सकता है उस वक्त 403 बड़ा बिजी हो, क्यूईडब्ल्यू बड़ा बिजी है ना. तो अब लोगों ने आज सोशल मीडिया पे बेइंतहा इसके मुतालिक कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि
इतनी महंगाई हो गई है और ये और वो.
जेट में फ्लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स हिज ओन जेट
एंड दैट्स हिज ओन मनी. किसी का गला काट के या किसी के
ओन मनी
कब्जा करके. हाँ उसने कोई पैसे नहीं कमाए, उसने अपने अपना काम करके पैसे कमाए हैं.
एग्जैक्टली दैट्स हिज ओन.
वो उसको जलाता है जो मर्जी करता है.
तो लोग लोग
क्रेजी क्रेजी
दे आर सो अपसेट
सोशल मीडिया इज क्रेजी टुडे
दे आर सो अपसेट विद ड्रेक के व्हाई वुड ही गो खुद ड्राइव करके क्यों नहीं गया
मर्जी उसकी
भाई मेरे पास अगर जेट है तो मैं मार्कम से सागर भी जेट में आऊंगा
हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली हम क्यों मरेंगे भाई हम क्यों मरेंगे इतना ज्यादा हम
रोज बैठ के आ गया जी
ड्राइविंग कर करके
आके मैथिसन पे उतर गया मैं
यानी उसने चोरी किसी की है किसी का गला काटा है या कोई ड्रग्स के पैसे हैं उसके पास उसने जो है किसी यतीम का हक मार के पैसे कमाए हैं उसने जो है कोई यहाँ पे कोई वो ट्रैफिकिंग का कोई रैकेट चलाता है उससे पैसे कमाए हैं हाँ नहीं ना
नहीं
हलाल का उसका भी पैसा है ना
ठीक है
वो पैसा वो किधर यूज करता है वो सड़ता है उड़ाता है जो मर्जी करता है उसकी मर्जी है और अगर उसने उस पैसे से अपना प्राइवेट जेट लिया है तो उसको सड़ने के लिए खड़ा किया
हमें क्यों दिया
हाँ तो उसने उस जेट को यूज करना है ना भाई
सवाल ये पैदा होता है
आपको क्या तकलीफ है भाई
आई हैज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स He worked hard for it.
देखो देखो ड्रेक साहब सानू भी अपने नाल कम दियो छोटा मोटा एक मिलियन डॉलर की गल है जिस वेले साढ़ा मिलियन डॉलर हो जाएगा असि तुहानू सलाम अलैकुम करके निकल जावांगे असि कोई भुखे शोदे लोग नहीं पर सड़ा ख्याल
करो आई वाज लाफिंग टुडे
आई नो मैं भी देख रही थी सोशल मीडिया मैं भी देख रही थी गाड़ी पे क्यों नहीं किया गाड़ी पे नहीं था जा सकता उसकी मर्जी है यार प्लीज गिव हिम सम स्पेस
Exactly.
वो गाड़ी में जाए टट्ठे खू के साथ थ्रू जाए वो जैसे मर्जी जाए खोती पे जाए साइकिल पे जाए साइकिल नहीं होता ना आपको पता ना साइकिल होता है
हाँ
साइकिल पे जाए जिसमें मर्जी जाए उसकी मर्जी है भाई
हाँ
और उसके पास अगर अपना तैयारा है जो कि उसने हराम कमा के नहीं वो किया तो फिर वो जिधर मर्जी अपने तैयारे पे जाए ना
अब तो कल के दिन ये भी कहेंगे कि ड्रेक जो है वो तो घर बना रहा है ना
हाँ
वो इतना बड़ा बना रहा है
क्यों बना रहा है इतना बड़ा
इसके अंदर जो है वो भी है बास्केटबॉल का कोर्ट भी है और पता नहीं और गोल्फ का भी क्या है उसके अंदर ये यही राइट हियर
आई नो वो इंस्पिरेशन जो है उसके पीछे वो है माइकल जैक्सन का वो जो था जिसमें सब कुछ था
मेंशन बना रहा है अपना
या मेंशन बना
तो अब कल के नहीं कहेंगे व्हाई ही से ये अपने जाके अपने
इतना बड़ा घर क्यों बना रहा है
हाँ, क्या
लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए
हाँ,
और ये नहीं है
हाँ, तो
भाई उसका खुद का पैसा है यार
अपार्टमेंट में क्यों नहीं रहता ये यू नो कम ऑन दैट्स हिज मनी व्हाटएवर ही वांट्स टू डू इट यू वर्क हार्ड यू मेक मनी एंड डू व्हाटएवर यू वांट विद योर मनी एटलीस्ट आई एंड शाजिया वुड नेवर आस्क यू
हम तो हमें क्या
बस एक हमारा, दे दो हमारा, के लिए।
हमारा आपसे पूछना बनता ही नहीं है भाई आप जो मर्जी करें साड़े अपने पैसे को जैसे एस्कोबार ने साड़ दिए थे अपने बच्चे के लिए 1.5 मिलियन डॉलर
देखो
साड़ दिए ना सारे पैसे उसके अपने पैसे
उसकी मर्जी है
उसकी मर्जी है
जो करे
उसका बच्चा जो है वो सर्दी से मर रहा था उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे अपना बच्चा इंपॉर्टेंट था उसके पैसे थे हाँ उसके इलीगल थे लेकिन उसके पैसे थे उसने साड़ दिए सारे
सारे मैंने किसी को नहीं दिया गवर्नमेंट को